आर्यांश अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। उसने क्लब में अचानक दीवा को देखा, जो काफी नशे में थी। दीवा का खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं था, ना ही वो खुद को ठीक से संभाल पा रही थी। हालांकि आर्यांश दीवा पर पूरी नजर बनाए हुए था, लेकिन कुछ मोमेंट्स के लिए वो अपने क्लाइंट के साथ बिजी हो गया। इस बीच दो लड़के आए और दीवा के साथ बदतमीजी करने लगे। उनमें से एक लड़का दीवा की हरकत से गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारने जा रहा था कि आर्यांश ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आर्यांश ने उसे वहां से भगा दिया और फिर अगले ही मोमेंट में दीवा उसकी बाहों में थी। दीवा ने आर्यांश को अपने इतने करीब देखा तो वो हड़बड़ाते हुए मदहोश आवाज में बोली, तुम आर्यांश कपूर, तुम यहां क्या कर रहे हो? एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, आर्यांश ने जवाब दिया। उसके चेहरे के भाव नरम हो गए थे।
ओह थैंक्स,
दीवा ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। दीवा ने ज्यादा कुछ जाहिर नहीं किया, उसने आर्यांश को थैंक्स भी बहुत धीमी आवाज में कहा था। आर्यांश को वहां देखकर दिल ही दिल में दीवा को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बिल्कुल ठीक समय पर आया था और उसने दीवा को बचा लिया था। दीवा अपने ख्यालों में खोई हुई आर्यांश का चेहरा देख रही थी कि तभी आर्यांश ने हल्की ना दिखने वाली स्माइल के साथ कहा, शायद तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो, है ना मिस गोयंका? आर्यांश की बात सुनकर दीवा आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगी। कई बार वो काफी अजीब हरकतें करता था। दीवा के दिल में जो बात चल रही होती थी वो अक्सर आर्यांश की जुबान पर होती थी। दीवा ने अपनी पलकें कई बार झपकाई, उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, ऐसे कौन सामने से चलकर थैंक यू डिमांड करता है मिस्टर कपूर? दीवा अभी भी खुद को ठीक से संभाल नहीं पा रही थी तो आर्यांश ने उसे और कस के थाम लिया। अचानक उसने दीवा के होठों पर हल्का सा किस करके कहा, मैं थोड़ा अलग हूं इस मामले में, अगर मैंने किसी की हेल्प की है तो बदले में मुझे एप्रिसिएशन चाहिए। आर्यांश की इस हरकत पर दीवा उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। वो जितना आर्यांश से दूर होने की कोशिश करती, आर्यांश उसे उतना टाइटली पकड़ रहा था। दीवा ने कसमसाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम बहुत अजीब हो। दीवा को आर्यांश पर गुस्सा आ रहा था। भले ही उसने उसकी जान बचाई थी, पर अब वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो इस वक्त उसे किसी जिद्दी आदमी की तरह लग रहा था। तुम्हें अजीब हूं, आर्यांश ने भौहें उठाकर कहा। हाँ, अजीब तो मैं हूं, इतना कहकर आर्यांश ने उसे एक झटके में छोड़ दिया था। उसे दीवा को इस तरह अपनी बुराई करना अच्छा नहीं लगा। आर्यांश की इस हरकत से दीवा को नशा एक झटके में उतर गया। उसने आर्यांश को घूर कर देखा और तेज आवाज में कहा, तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे क्या? दीवा खुद की कमर को सहलाने लगी, गिरने की वजह से उसे दर्द हो रहा था। आर्यांश नीचे झुका और बोला, मुझे अजीब किसने कहा था? अजीब लोग ऐसी ही हरकतें करते हैं। दीवा का मन किया कि वो आर्यांश के बाल नोच ले। उसे गिरा हुआ देखकर भी आर्यांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, मानो वो मन ही मन उसके इस हाल को एंजॉय कर रहा हो। दीवा को लगा आर्यांश हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करेगा, लेकिन वो तो हाथ बांधे उसे देख रहा था। दीवा जैसे तैसे करके टेबल का सहारा लेकर खड़ी हुई और चिढ़कर बोली, तुम सिर्फ अजीब ही नहीं, थैंकलेस और क्रूएल भी हो। एक लड़की यहां गिरी हुई है और तुम उसे उठाने के लिए हाथ भी नहीं दे सकते। ओ रियली? थोड़ी देर पहले जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था तब मैं अजीब था, और अब जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैं थैंकलेस और क्रूएल हो गया। अब तुम इतना कह रही हो तो तुम्हारी हेल्प कर ही देता हूं, आर्यांश ने हल्का मुस्कुराकर कहा। वो दीवा के पास बढ़ने लगा, तभी दीवा कुछ कदम पीछे हो गई। दीवा ने उसे हाथ के इशारे से वहीं रोकते हुए कहा, रहने दो, मैं खुद कर लूंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। आर्यांश ने बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए। दीवा ने काफी ड्रिंक कर रखी थी, हालांकि आर्यांश की बातों ने उसके दिमाग को काफी हद तक ठिकाने लगा दिया था, लेकिन उसके कदम अभी भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो फिर से लड़खड़ाने लगी थी। दीवा ने लाचारी से आर्यांश की तरफ देखा तो वो बोला, किसने कहा था इतनी ड्रिंक करने के लिए? यही हरकतें रहीं तो इसी तरह किसी गुंडे के बीच फंस जाओगी। तुम जैसे सनकी इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मैं उन गुंडों के बीच ही फंस जाऊं आर्यांश कपूर, दीवा ने चिढ़कर जवाब दिया। आर्यांश आगे बढ़कर दीवा की मदद करना चाहा, लेकिन दीवा ने उसके हाथ को झटक दिया। तभी अचानक आर्यांश ने दीवा को अपने कंधे पर उठा लिया। उसकी इस हरकत पर दीवा की आंखें बड़ी हो गई और वो उसके कंधे पर मारने लगी। मुझे मारना बंद करो, तुम इस वक्त बिल्कुल भी होश में नहीं हो। जब इंसान को किसी की जरूरत हो तो उसे इतना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, चुप करके बैठो, आर्यांश ने सख्ती से कहा और दीवा को इस तरह उठाकर क्लब के बाहर निकलने लगा। अब दीवा ने आर्यांश के कंधे पर मारना बंद कर दिया। उसने काफी आराम से अपना सर उसके कंधे पर टिका लिया। उसकी परफ्यूम की स्मेल कमाल की थी, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी की तरह। उस खुशबू को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। बाहर आते ही ठंडी हवा के थपेड़े दीवा को अपने चेहरे पर महसूस हुए। उसे ये खुली हवा सुकून दे रही थी, पर अगले ही पल उसे हल्की ठंड लगने लगी। वो आर्यांश से चिपक गई। उसकी इस हरकत पर आर्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आर्यांश ने उसे छेड़ते हुए कहा, इंजॉय कर रही हो? आर्यांश की बात सुनते ही दीवा होश में आई। उसने अपनी आंखें बड़ी की और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे नीचे उतारो। आर्यांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी गाड़ी के पास आया और उसने दीवा को पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। वो खुद दीवा के पास ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। आर्यांश ने एक नज़र दीवा की तरफ देखा और बोला, तुम सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देती कि तुम्हें भी मेरे साथ अच्छा लगता है? इन योर ड्रीम्स, दीवा ने चिढ़कर कहा और गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे पहले ही आर्यांश ने गाड़ी के दरवाजे को लॉक कर दिया था। चुप करके बैठो, आर्यांश ने सख्त आवाज में कहा और गाड़ी स्टार्ट कर ली। दीवा ने आगे कुछ नहीं कहा। वो सीट पर लीन हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो ये भी नहीं जानती थी कि इस वक्त आर्यांश उसे कहाँ लेकर जा रहा है। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी रुकी तो दीवा ने अपनी आंखें खोली। आर्यांश ने गाड़ी का दरवाजा खोला और दीवा को बाहर आने को कहा। ये हम कहाँ आ गए हैं और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? दीवा ने हैरानी जताते हुए पूछा। उसने आसपास देखा तो उसे एक 7-स्टार होटल का बोर्ड दिखाई दिया। आर्यांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। दीवा कुछ समझ नहीं पा रही थी। सच में कई बार आर्यांश अजीब हो जाता था। उसने दीवा की बात का जवाब देने के बजाय उसे गोद में उठाकर होटल के अंदर जा रहा था। प्लीज छोड़ दो मुझे, हम यहाँ क्यों आए हैं? दीवा ने हल्का घबरा कर पूछा, हालांकि इसका सवाल बहुत बेवकूफी भरा था। वो जानती थी कि आर्यांश इस वक्त उसे होटल के रूम में लेकर जा रहा है। जैसा कि उसे अंदाजा था, कुछ ही देर में वो होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर थे। वहां आते ही आर्यांश ने दीवा को नीचे उतारा और उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुमसे उम्र भर का वादा नहीं चाहिए और ना ही मैं ये कहूंगा कि मेरे साथ प्यार करते हुए पूरी जिंदगी बिताओ। बस एक रात दीवा गोयनका, एक रात बिताओ और तुम्हारे पापा के सारे लोन मैं पे कर दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। दीवा कश्मकश की स्थिति में आर्यांश के सामने खड़ी थी। उसके पास ना कहने का ऑप्शन था, लेकिन एक हाँ उसकी जिंदगी बदल सकती थी। वैसे भी कौन सा वो आर्यांश के करीब पहली बार जा रही थी। आर्यांश दीवा के जवाब का इंतजार कर रहा था। वहीं दीवा आंखों में उलझन लिए आर्यांश को देख रही थी।
तो क्या होगा दीवा का फैसला? क्या वो अपने पापा के लिए आर्यांश के साथ समझौता करेगी या फिर एक बार फिर आर्यांश की ईगो को नई चोट मिलेगी?